సాద్వైతం సావధూతం భోజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురూం దీనతారిణం వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయకే కృష్ణ చైతన్య నామనే గౌరవృషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతై దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. తో కల్ సే హమ్నే పహలే శ్లోక్ కి చర్చ ఆరంభ కి. वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम. और मनोवेगम और क्रोध वेगम की चर्चा समाप्त हुई थी और आज से जिह्वा वेगम से हम प्रारंभ करेंगे. ठीक है, तो आप में से कोई पढ़िए. हर बार कोई अलग अलग भक्त पढ़ेंगे ताकि सबको पढ़ने का अवसर मिले. हाँ, कौन पढ़ेंगे? जहां तक जीभ के वेग वहां से.
जहां तक जीभ का वेग है, हम तभी अनुभव करते हैं कि जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देकर प्रसाद
नहीं कुछ.
जहां तक जीव का वेग है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है. सामान्यतया हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देकर प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए. भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे. जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है. मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में अपनी जीव या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें. यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो भोजन तथा जीव के लिए हमारे मत में हो जाएंगे.
बस यही है. जिह्वा और उदर को वश में करने के लिए, तो जैसे यहाँ चार्ट में दिखलाया हुआ है, जिह्वा एवं उदर का नियंत्रण कैसे होता है? केवल कृष्ण प्रसादम ग्रहण करने से. और यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल कृष्ण प्रसाद ही नहीं, और क्या बतला रहे हैं प्रभुपाद जी? समय पर, सही समय पर लेना चाहिए. और क्या बता रहे हैं? होटलों में, मिठाइयों की दुकानों में इधर उधर जाके नहीं खाना चाहिए. इससे जिह्वा और उदर वेग नियंत्रित हो सकते हैं. आगे फिर उपस्थ वेग की चर्चा होगी.
इसी प्रकार जननेन्द्रियों के वेग या कामना वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं. जननेन्द्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भविष्य संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए. का उपयोग न किया जाए। कृष्ण भावना मृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि कामेंद्रियों की प्रति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें गल्ला गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहाँ उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जननेत्रियों का उपयोग करने दिया जाता है।
ठीक है, तो इस परिच्छेद का सार यहाँ इस चार्ट में है, उपस्थ वेगम। तो उपस्थ का नियंत्रण कैसे किया जाता है? कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करने से, अन्यथा जननेन्द्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विवाह के भीतर और वो भी केवल कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति हेतु। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है, जब ये सही भाव से नहीं किया जाता है तो परिणाम क्या होता है? असुरी वृत्ति के संतानों की उत्पत्ति होती है। क्या उदाहरण है? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वही सेम वही है। ठीक है, अच्छा आगे पढ़िए।
जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तो उसे प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य समझा जाता है।
हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसे मध्यम अधिकारी व्यक्ति भी गुरु बन सकते हैं। यहाँ आपको याद दिलाएं फिर से, सबसे पहले दिन में क्या चर्चा की थी? आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी के लक्षण, ये विषय है पहले श्लोक का जिसकी चर्चा अब चल रही है। और इस श्लोक का अंतिम लाइन क्या है? सर्वाम इमाम पृथ्वीम सशिष्यात्, सारे पृथ्वी में वो शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं मध्यम अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो मध्यम अधिकारी भी शिष्य बना सकते हैं। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा हम समझ सकते हैं। हालांकि जितने उन्नत भक्त होंगे उतना अच्छा है, परंतु तो त्रिदंडी गोस्वामी है जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो भी पृथ्वी भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य हैं। षड वेगों का जो दमन कर सकते हैं, जो उनको नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति सारे पृथ्वी में शिष्य बनाने के लिए योग्य हैं। तो अब इस तात्पर्य का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आपको याद होगा कि इस तात्पर्य के चार भाग हमने बताए थे। पहले भाग में प्रायश्चित की चर्चा हुई थी, दूसरे भाग में षड वेगों का वर्णन और किस प्रकार से भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार करके इन षड वेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। और अब इस तात्पर्य के तीसरे भाग में श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुवृत्ति टीका से यहां कुछ बतलाएंगे। हाँ, तो पढ़िएगा आगे।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री उपदेशानुवृत्ति अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्मबुद्धि से तीन प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं, बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर के वेग। जब जीव इन तीनों वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अमंगलमय हो जाता है।
ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बताते हैं, षड वेद की जगह वो त्रिवेद की बात करते हैं कि बात एक ही है वास्तव में, क्योंकि त्रिवेद का जो विभाजन होता है तो इसमें भी हम देखते हैं कि षड वेद ही हो जाते हैं। तो त्रिवेग या तीन प्रकार के जो वेग हैं वो तो कौन से वेग हैं, एक बोलने का वेग, दूसरा मन का वेग और तीसरा शरीर का वेग। और जो इन वेगों को दमन करने का प्रयास करता है, जो अपने इंद्रियों को इस प्रकार से वश में लाने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसे? नहीं, यहां क्या लिखा है, इस तपस्वी, भले वो प्रयास कर रहा हो, भले उसने सफलता प्राप्त न की हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस रास्ते में अगर चल रहा हो, इन वेगों का दमन करने का प्रयास कर रहा हो गंभीरता पूर्वक, तो वो तपस्वी कहलाता है। तो यहां ये नहीं कहा गया है कि तपस्वी केवल सन्यासी होता है या तपस्वी केवल ब्रह्मचारी होता है, तपस्वी गृहस्थ भी होता है, बल्कि होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को तपस्वी होना चाहिए। मनुष्य जीवन जब प्राप्त किया है तो हम सबको तपस्वी होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को वश में करने के सिवाय हम आगे उन्नति नहीं कर सकते भक्ति के पथ में। और आगे चल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाने वाले हैं कि मन के वेग भी दो प्रकार के होते हैं, एक मन का वेग और दूसरा क्रोध का वेग। और शरीर के वेग भी तीन प्रकार के होते हैं, जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। तो बात वही है, श्रील रूप गोस्वामी षड वेग की बात करते हैं और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने केवल विभाजन एक दूसरी तरह से किया है, परंतु निष्कर्ष वही है। तो अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रथम वेग अर्थात बोलने का वेग, इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे।
जब हम वाणी के वेग की बात चलाते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम का कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं, ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते हैं, ये सब वाणी के वेग के परिणाम होते हैं। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण तत्व की ओर मोड़ना होगा।
ठीक है, आचार्य घुमाएंगे आप चार्ट, ये लिख लिया ना सबने? हाँ, तो इस परिच्छेद में जो कि अभी पढ़ा गया, इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि बोलने के वेग से दो प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं। साधारणतः लोग केवल व्यर्थ की बातें करते हैं अर्थात भौतिक बातें करते हैं, क्योंकि उनको आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान ही नहीं है, भगवान कृष्ण के भक्ति मार्ग में कोई रुचि ही नहीं है, तो वो तो केवल व्यर्थ की बातें ही करते हैं। तो जो व्यर्थ की बातें करते हैं उनकी इंद्रियां वश में कभी नहीं हो सकती हैं। और बोलने का वेग फिर उसको नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता, फिर उसको इसका दमन नहीं किया जा सकता। तो व्यर्थ की बातें, तीन प्रकार के व्यर्थ बातें होती हैं, कौन से हैं वो तीन? एक जो भोगी बात करता है, भोगी कौन से विषय पे बात करेगा? भोग की बात करेगा, भोगी भोग की बात करेगा। कर्मकांडी वो सकाम कर्म की बात करेगा। अपने कर्मों के फलों से बहुत आसक्त होता है कर्मकांडी, कैसे तरह तरह के उपासना आदि किए जाए जिनसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, भौतिक सुख सुविधा की वृद्धि हो, और तीसरे मायावादी। मायावादियों की बातें क्या होती हैं? कृष्ण को नकारना, हम ही कृष्ण हैं, हम ही भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, भगवान निराकार हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं इस जगत में तो उनका भी रूप एक माया का रूप होता है। इस प्रकार से शास्त्रों के वचनों का तोड़ मोड़ करके मनगढ़ंत ढंग से इसका कोई अलग ही अर्थ निकालते हैं और इस प्रकार से गलत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो भोगी की बातें, कर्मकांड की बातें, मायावादी, ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान योग के पथ को स्वीकार करने वाले लोग होते हैं, तो इन सब की बातें व्यर्थ होती हैं। इसलिए इनसे बोलने का वेग जो है उसका दमन नहीं हो सकता। केवल जब बोलने की प्रवृत्ति है वो कृष्ण में केंद्रित की जाती है, अर्थात जब हम कृष्ण कथा बोलते हैं तब जाकर हमारी वाणी संयमित हो सकती है, ये बोलने का वेग वश में आ सकता है। और ये तो केवल भक्त ही करते हैं, बोलने के वेग का सही नियंत्रण है ये। और प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि बोलना, बोलने का वेग, ये न केवल मुंह से बोलने की बात है लेकिन पुस्तकें छापना ये भी एक बोलने के वेग का ही रूप है। आदमी कुछ कहना चाहता है, आदमी क्या बोल रहा है, मैं कुछ कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सुने। अगर हम कोई प्रवचन दे रहे हैं या कोई भाषण दे रहे हैं तो कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं? सीमित लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम अगर कुछ कहें और वह पुस्तक रूप में छाप दिया जाए और फिर उसका वितरण किया जाए तो लाखों लोग पढ़ सकते हैं। तो लोगों की इच्छा होती है कि मैं भले कितना ही बकवास क्यों ना बोल रहा हूं लेकिन मेरी बात लोगों को सुनना चाहिए, लोगों को जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने बातों का प्रचार प्रसार करने हेतु लोग बहुत सारे किताबें छापते हैं। तो किताबें छापना, बात करना, ये सब बोलने के वेग के ही लक्षण हैं। तो अगर किताबें भी छापना है तो कृष्ण के बारे में हमें कृष्ण कथा की किताबें छापनी चाहिए, बोलना है तो केवल कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, ये निष्कर्ष है। ठीक है, आप सबने लिख लिया। तो इसलिए यहां पर श्रीमद् भागवत का प्रमाण देते हैं श्रील प्रभुपाद। ये दो प्रसिद्ध श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, जिसमें ये श्लोक वास्तव में नारद मुनि ने कही हुई हैं अपने शिष्य व्यासदेव से। जब नारद मुनि सम्याप्राश में आए, जो कि व्यासदेव का आश्रम है सरस्वती नदी के तट पर, तो उन्होंने व्यासदेव जी को हल्के से डांटा। हालांकि व्यासदेव इतने बड़े मुनि हैं, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, फिर भी वो नारद मुनि के शिष्य हैं। इसलिए गुरु का कर्तव्य होता है कि कभी कभी जब उचित होता है तो वो शिष्य को डांटते हैं। तो नारद मुनि ने डांटा कि आपने तो इतने सारे ग्रंथों की रचना की लेकिन धर्म के नाम पे वास्तव में आपने इंद्र तृप्ति या भोग को बढ़ाया है, लोगों को, जनसाधारण को आपने भोग वृत्ति में लगा दिया है। आपने बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके नाम का वर्णन नहीं किया है, तो ये आपको करना चाहिए। तो इस दौरान नारद मुनि ने ये दो श्लोक कहे। ये पहले स्कंद के पांचवें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक हैं। नयद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। तात्पर्य अनुवाद पढ़िएगा।
जो संत उस भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा सोमों के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतः उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात नारद जी कहते हैं। नयद वचस चित्र पदम हरेर, अगर ऐसे शब्द हैं जो भगवान हरि का गुणगान नहीं करते हैं, भगवान हरि की प्रशंसा नहीं करते हैं, वो हरि जिनका गुणगान करने से सारा जगत पवित्र हो सकता है, तो ऐसे वचन वायसम तीर्थम, वायस मतलब कौवा, कौवे का तीर्थ स्थान है। कौवे का तीर्थ स्थान कैसे होता है? बहुत सुंदर होता है, बहुत रमणीय होता है, बहुत ही सुगंधित होता है। कैसे होता है कौवे का तीर्थ स्थान? नहीं नहीं वो बात नहीं, कौवे का तीर्थ स्थान मतलब क्या है? अपवित्र स्थान, जहां गंदगी होती है वहां कौवे पाए जाते हैं ना। आप देखेंगे कौवे का स्वभाव होता है, एक सुंदर उद्यान है, बगीचा है, फूल खिल रहे हैं सब जगह, हरियाली है, और एक कोने में कहीं कीचड़ या कचरा है, वहां पर गंदगी है, तो कौवा कहां जाएगा?
कीचड़
में, गंदगी में जाएगा। तो इसलिए गंदे स्थान ये कौवे के तीर्थ स्थान माने जाते हैं, कौवे वहां जाते हैं। तो जो शब्द भगवान के गुणगान नहीं करते हैं वो ऐसे माने जाते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग भगवान की कथा नहीं बोलते हैं वो कैसे हैं? वो कौवे के बराबर हैं। कौवा कैसे कैसे बोलता है? कोई मीठी बात बोलता है? नहीं। इसलिए जो जो मनुष्य भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, भले भौतिक दृष्टि से कोई कहे कि ये बहुत मधुर गाते हैं, इनकी वाणी बहुत मधुर है, लेकिन फिर भी ये सब कौवे के बराबर हैं। और फिर आगे अब यहां इस श्लोक में नारद मुनि उन वचनों की चर्चा कर रहे हैं जो कि श्री कृष्ण के गुणगान नहीं करते हैं। अब आगे चल के इस अगले श्लोक में नारद मुनि कहेंगे उन वचनों के बारे में जिनसे कि कृष्ण का गुणगान होता है। ये भी श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। तद्वाग् विसर्गो जनताग् विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। पढ़िएगा।
इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम यश रूप लीला आदि की दिव्य महिमा के कारण से ओत-प्रोत होता है, वह एक दूसरी ही सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होता है जिससे इस जगत की भ्रम सभ्यता के अपवित्र जीवन में शांति आकर्षित है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना जाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। निष्कर्ष यह निकला कि
ठीक है, तद्वाग विसर्गो, वो वचन विसर्ग एक अलग ही सृष्टि है जो कि अनंतस्य यशः अंकितानि यत्, जो अनंत भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करते हैं, उनके नाम के, उनके यश का आदि। और ऐसे वचन जनता अघ विप्लव, जनता के पापी जीवन में एक विप्लव या क्रांति पैदा करती है। किस प्रकार की क्रांति? गोलियों की क्रांति नहीं, तीर धनुष की क्रांति नहीं, एटम बॉम्ब की क्रांति नहीं, भक्ति की क्रांति, जिसमें कि लोगों के हृदय के भीतर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे से उनके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम जागृत हो जाता है। तो ऐसे विप्लव या क्रांति की बात नारद जी कह रहे हैं, कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि यद्यपि प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, अगर इसमें कोई त्रुटियां भी हों, कोई व्याकरण में त्रुटियां हैं, कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हैं इस प्रकार के, तो फिर भी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। इसकी शक्ति, ये वाणी की शक्ति उतनी ही है। एक बार हम एक जगह गए थे तो वहां एक माताजी मिली जो कि बहुत एक बड़े परिवार की थी और काफी प्रसिद्ध परिवार है वो, सारे भारत में वो काफी कोई दवाइयां वगैरह बनाते हैं, उस कंपनी के हैं, कोई मालिक हैं। तो कह रही थी आपके भक्त लोग टीवी पे आते हैं, प्रवचन देते हैं, परंतु हमने देखा कि उनका उच्चारण ठीक नहीं होता है और वो भाषा जो बोलते हैं वो ठीक नहीं है, कभी कभी गलती कर लेते हैं। उन्होंने थोड़े बहुत उदाहरण दिए, उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने कहा, लेकिन ऐसे तो ठीक नहीं है। तो ऐसे काफी कुछ कहने लगे। फिर हमने ये श्लोक उनसे कहा, ठीक है, भले थोड़े बहुत त्रुटियां हो भी जाएं, भाषा की त्रुटियां, व्याकरण की त्रुटियां हो भी जाएं, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं? आखिर भाषा उनकी इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी कोई गलतियां हो भी जाएं, तो इससे वाणी का जो प्रभाव है वो कम नहीं होता, वो वाणी की शक्ति उतनी ही होगी। ये जो आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं ये व्याकरण या भाषा की विद्वत्ता का प्रदर्शन हेतु नहीं होते हैं, यहां लोगों के जीवन में एक क्रांति पैदा करने के लिए होती है, ताकि लोगों की पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए, ये उद्देश्य है। तो अगर केवल भाषा कितनी शुद्ध है ये बताने के लिए प्रवचन करते लोग, तो फिर जो बड़े बड़े भाषा, हिंदी या संस्कृत भाषा के विद्वान है उनको बुलाया जाता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के हृदय में अगर कोई भक्ति भावना नहीं है तो फिर क्या लाभ? अगर वो अवैष्णव हैं तो क्या लाभ? अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठम यथापयः, कि अगर कोई अवैष्णव है तो उसके मुख से हमें कृष्ण कथा नहीं सुननी चाहिए। जिस प्रकार से एक सांप ने स्पर्श किया हुआ दूध का पान हमें नहीं करना चाहिए, हालांकि दूध बहुत पौष्टिक आहार है, फिर भी अगर सांप ने उसके अंदर जहर डाल दिया हो तो वो दूध हमारे लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा, वो पोषक आहार नहीं होगा, हानिकारक होगा। ठीक उसी प्रकार से हालांकि कृष्ण कथा हमारे आत्मा के लिए बहुत पौष्टिक है, फिर भी अगर वही कृष्ण कथा एक अभक्त कहता है तो ये बहुत हानिकारक है। तो ठीक है, आगे निष्कर्ष फिर क्या है? ठीक है, तो ये निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष क्या है अपने शब्दों में बताइए? ये हम बीच बीच में परीक्षा करते रहेंगे कि कोई सोए तो नहीं बीच में, तो आप सबसे हम प्रश्न करते रहेंगे। हाँ बताइए।
जब भगवान की चर्चा करते हैं तो व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं।
ठीक है, तो ये वाचो वेग, बोलने के वेग का को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, कौन बताएंगे? भगवान की चर्चा करने से, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो फिर व्यर्थ की ये बोलने का वेग, इसकी चर्चा समाप्त करने के बाद अब चर्चा हो रही है मन का वेग। हाँ जी पढ़िए।
चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रीति कहलाता है, दूसरा विरोध युक्त क्रोध। मायावादियों के दर्शन, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में संलग्नता को अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भक्तावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तो वे क्रोध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है।
ठीक है, इसको घुमाएंगे जरा। मन का वेग, इसके दो भाग हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत कहते हैं। एक को कहते हैं अविरोध प्रीति और दूसरे को कहते हैं विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति मन का वो वेग है जो कि अनियंत्रित आसक्ति से उत्पन्न होता है, और इसके कारण तीन हैं। एक तो मायावाद दर्शन में श्रद्धा रखना, दूसरा कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास रखना, तीसरा भौतिक इच्छाओं पर आधारित योजनाओं पर विश्वास रखना। अगर इन तीन चीजों पर हम विश्वास रखेंगे तो हमारे मन में भौतिक आसक्तियां बढ़ जाएंगी, ये अनियंत्रित होंगी और इसकी वजह से मन विचलित हो जाता है। इसे अविरोध प्रीति कहते हैं। और दूसरी ओर जब ये भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हताश होकर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। जैसे यहां अंतिम वाक्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध, यह है विरोध युक्त क्रोध। तो मन के वेग का दूसरा भाग है। तो बोलने का वेग और मन का वेग, इन दो वेगों की चर्चा करने के बाद अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शरीर के वेगों की चर्चा करने वाले हैं। आपने लिख लिया? जब भी आप किताब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के, तो इसी प्रकार से आप नोट्स बनाइए, ठीक है? ऐसे आदत बनाइए, आपके साथ हमेशा ऐसे कोई किताब, डायरी आदि कुछ रखिए, और जब हम किताब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के, तो बड़े गंभीरता से पढ़ना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी पाठशाला में अपने परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है, उसी प्रकार हमें भी इन किताबों का अध्ययन बड़े गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। अभी शरीर के वेग की बात हो रही है।
इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं, यथा जीव, उदर तथा जननेन्द्रियों की आवश्यकताएं। जहां तक शरीर का संबंध है, ये तीनों इंद्रियां एक ही सीधी रेखा में देखी जाती है और शारीरिक आवश्यकताओं का कारण जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने तक सीमित कर दें, तो उदर तथा जननेन्द्रियों की आवश्यकता है तथा वे स्वतः नियंत्रित हो जाएंगे। इस प्रसंग में
ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके बाद तो शरीर के वेग तीन प्रकार के हैं, जीभ का वेग, उदर का वेग और जननेन्द्रियों का वेग, और तीनों का नियंत्रण केवल कृष्ण प्रसाद से हो सकता है। और कौन सी महत्वपूर्ण बात की गई है यहां पर इस परिच्छेद में जो अभी हमने सुना? तीनों इंद्रियां एक लाइन में है, बिल्कुल है ना। तो जीभ को वश में कर लिया तो उदर वश में हो जाएगा, उदर वश में हो गया तो जननेन्द्रिय वश में हो जाएंगे। तो मूल क्या है? जीभ को वश में करना। कितना बड़ा विज्ञान है तो जीभ को वश में करना ये बहुत आवश्यक है। और इसके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जो प्रसाद सेवा प्रार्थना है उसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जो हम हर रोज सुबह दोपहर शाम गाते हैं। लेकिन क्या इसके अर्थ क्या है इसके बारे में भी हम चिंतन करते हैं? जब हम महाप्रसादे गोविंदे कहते हैं, शरीर अविद्या जाल कहते हैं, तो क्या हम चिंतन कर रहे होते हैं कि क्या हम बोल रहे हैं? करना चाहिए। अच्छा चलिए पढ़िएगा। हालांकि अभी हम प्रसाद नहीं लेंगे लेकिन फिर भी ये प्रार्थना करेंगे। शरीर अविद्या जाल, तो शरीर क्या है? हालांकि बंगाली में है लेकिन हिंदी बोलने वालों को आसानी से समझ में आएगा। शरीर क्या है? अविद्या का जाल है। फिर जड़ेंद्रिय ताहे काल, फिर क्या मतलब? जड़ेंद्रिया इंद्रिया
सारे हमको काल की तरफ ले
जाएंगे। जड़ है ये, जड़ इंद्रिया। जीवे फैले विषय सागरे, ये हमें विषय सागर में गिरा देती हैं। ये इंद्रियां, ये जड़ इंद्रियां हमें जीव को इस सागर में, विष के सागर में, विषय सागर में गिरा देती हैं। विष और विषय दो शब्द हैं, देखिए विष और विषय दोनों में अंतर क्या है? विष तो एक बार मारता है, विषय बार बार मारता है। बार बार हमारे मृत्यु का कारण होता है विषय। तो कौन सा ज्यादा खतरनाक है और हानिकारक है? विषय, इंद्रियों के विषय। तो ये विषय भी विष ही है लेकिन बहुत जबरदस्त विष है। ऐसा विष जो बार बार हमें, हमारे शरीर का नाश करता है। तार मध्य जिह्वा अति लोभ माय सुदूरमति। तो जितने भी इंद्रियां हैं, जो जड़ इंद्रियां हैं, उनमें से जीव जो है सबसे ज्यादा लोभी है। सुदूरमति, उसे वश में करना बहुत मुश्किल है। सुदूरमति, उसकी मति अच्छी नहीं है। बहुत लोभी है, बहुत कुछ चाहता है। ताके जेता कठिन संसार है, उसको जीतना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। परंतु कोई आशा है? कोई आशा है हमारे लिए? क्या है आशा? कृष्ण बड़ा दयामय है। भले ये जीव को जीतना प्राय असंभव हो परंतु कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण है दयावान। करिबार जिह्वा जय, तो जीव, हमारे जीव को जीतने के लिए उन्होंने कोई साधन दिया है, कोई उपाय दिया है। वो क्या है? स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, कि हे भाई स्वप्रसाद कृष्ण ने दिया है, अपना ही प्रसाद भगवान ने हमें दिया है। जिससे क्या हो सकता है, सही अन्नामृत खाओ, ये केवल अन्न नहीं है, ये अमृत है, अमृत रूपी अन्न है। राधा कृष्ण गुण गाओ, इस प्रसाद अन्नामृत का सेवन करते समय राधा कृष्ण का गुणगान करो और प्रेम डाको चैतन्य निताय, प्रेम से गौर निताय के नामों को पुकारो। तो अगली बार जब आप प्रसाद लेंगे और ये प्रार्थना आप गाएंगे तो अवश्य इसका अर्थ क्या है वो याद रखिए कि हम प्रसाद का सेवन क्यों करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, हमारे जिह्वा को वश में करने के लिए। जिह्वा वश में हो जाए उदर और जननेन्द्रियां स्वयं ही वश में हो जाएंगे। हाँ, तो इसका अनुवाद पढ़िएगा। जहां तक हो सके प्रसाद लेते समय हमें या तो शांत बैठना चाहिए या तो कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बैठ के भौतिक बातें करना ये उचित नहीं है। कई जगह ऐसे भी होता है, कोई बैठ के भक्त किताब पढ़ते हैं या कोई प्रभुपाद जी कहीं कहीं प्रभुपाद जी का प्रवचन टेप पे चलाते हैं, कोई भजन चलाते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से भी अगर व्यक्ति का मन प्रसन्न हो प्रसाद लेते समय तो फिर पचन आदि सब ठीक ठाक हो जाता है। अगर व्यक्ति तनाव में है या वातावरण कुछ अनुकूल नहीं है तो फिर पचन भी ठीक से नहीं होता, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता। तो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हमें प्रसाद लेते समय वातावरण बहुत ही अनुकूल, बहुत ही भक्तिमय बनाना चाहिए और कोई तनाव की बातें ऐसे नहीं करनी चाहिए उस समय। और एक आचार की बात है, मर्यादा की बात है कि प्रसाद लेते समय प्रसाद की टीका नहीं करनी चाहिए। अरे ये तो कितना ये है, अरे ये कितना तेल है इसमें, अरे ये स्वादिष्ट नहीं है, अरे ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आगे पढ़िए।
बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दूध, उत्पाद
इसमें स्वादिष्ट होने के कारण केवल प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के विकोष करने का शिकार बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन करने के मनोभाव से पंचा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में लग जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का
प्रयास करते हैं। मेरे तो कई प्रश्न है।
कोको के बारे में नहीं किया, जैसे यहाँ पे मैंने प्रसाद लिया था केक प्रसाद, उसके अंदर कोको था तो फिर हमने तो यहाँ कॉफी अवॉइड किया है तो कोको और कॉफी में डिफरेंस
पता नहीं कहाँ क्या इस्तेमाल किया गया वो देखना पड़ेगा बाद में, लेकिन हाँ इसको घुमा देंगे। हाँ तो जीभ का वेग बड़ा जबरदस्त होता है, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन करना एक ओर और दूसरी ओर केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार करना। या तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करें, भौतिक आहार ग्रहण करें, मांसाहारी हो या शाकाहारी हो ये वर्जित है, केवल हमें कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और वो भी केवल स्वाद के लिए स्वीकार करना या तो अधिक मात्रा में स्वीकार करना, इससे भी जीभ का नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो कृष्ण प्रसाद स्वीकार करना चाहिए बिल्कुल उपयुक्त मात्रा में सही भाव से, इससे जीभ का वेग नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबने लिख लिया, लिख लिया ना, एक मिनट लिखाने में।
केवल स्वाद के लिए स्वीकार करना, मतलब केवल स्वाद के लिए नहीं स्वीकार करना
चाहिए। हाँ, इससे नियंत्रित नहीं हो सकता है मन। केवल कृष्ण प्रसाद भी अगर हम केवल स्वीकार करें स्वाद के लिए तो उससे भी नियंत्रित नहीं हो सकता है महाराज जी। देखिए दो प्रकार के भोजन हैं, एक तो है कृष्ण प्रसाद और दूसरा है जो कृष्ण प्रसाद नहीं है। तो जो कृष्ण को अर्पित नहीं किया जाता वो तो लेना ही नहीं चाहिए, उससे तो ऐसे प्रकार के भोजन से तो जीभ का नियंत्रण कभी नहीं हो सकता। और जहां तक कृष्ण प्रसाद का सवाल है, कृष्ण प्रसाद भी अगर हमने इस भावना से लिया, से ग्रहण किया कि ये स्वादिष्ट कितना है, केवल स्वाद के दृष्टि से उसे लिया या अधिक मात्रा में स्वीकार किया, तो फिर भी जीभ का वश करना मुश्किल है। सही मात्रा में लेना चाहिए, सही भाव से लेना चाहिए, फिर ऐसे प्रसाद ग्रहण मात्र से जीभ का नियंत्रण हो सकता है। लेकिन ये वर्जित शब्द यहां रह गया, ये भी वर्जित शायद कल हम में से सभी लोग 10 बार सोचेंगे खाने के पहले, नहीं? सफर करते समय सबसे अच्छा यही है कि आप साथ में कुछ प्रसाद लेकर जाएं। जब गर्मी का मौसम होता है और प्रसाद ज्यादा समय टिकता नहीं है तो ठीक है, एक बार के लिए तो ले जा सकते हैं और बाकी के सफर के लिए आप कुछ सूखा कुछ ले जा सकते हैं जो बिगड़ता नहीं है गर्मी में, या तो फिर आप फल ले सकते हैं, ऐसे कुछ लेकर सफर में आप अपने आप को पोषण दिला सकते हैं। प्रश्न ये है कि भगवान को 56 भोग अगर अर्पण किया जाए तो किसको दें? स्वीकार करने वालों की कोई कमी नहीं है, अर्पण करने वालों की कमी होती है। वैसे गृहस्थों का कर्तव्य होता है, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जब भी गृहस्थ के घर में प्रसाद बनता है तो सर्वप्रथम उसे अपने घर के बाहर जाना चाहिए और 3 बार पुकारना चाहिए, कोई भूखा है, कोई भूखा है, क्या कोई भूखा है। और अगर ऐसे नहीं कि इतने हल्के से बोले कि वे और निकल आए, बस 3 बार भूखा है फिर चल देते चले आए, नहीं, जोर से बोलना चाहिए। और ऐसा है अगर कोई कहता हाँ मैं भूखा हूं तो बुला लेना चाहिए, उसे खिलाना चाहिए और फिर परिवार के सदस्यों को खाना चाहिए। मतलब घर में जब भोजन बनता है तो अगर 3 लोग हैं तो 3 से ज्यादा लोगों के लिए बना लेना चाहिए। अतिथि जो तिथि के बिना जो बिन बुलाए बिन बताए आ जाता है, ये अतिथि है। तो फिर ऐसे अतिथियों को खिलाना ये गृहस्थ का कर्तव्य होता था, धर्म होता था। आजकल तो समस्या काफी कृत्रिम हो गई, कभी कैसे जो 20वें मंजिल में रहता है वो कहां से चिल्लाएगा, क्या बोलेगा, है ना? अभी बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, 20वें मंजिल पे कोई रहता है वो क्या करेगा, कैसे करेगा। और आजकल खर्चे इतने हैं और आदमी को बुलाएं, आदमी कौन सा है किस प्रकार का है कहना भी मुश्किल है। परंतु सिद्धांत रहता है प्रसाद का वितरण होना चाहिए, तो प्रसाद बांटने में कोई समस्या नहीं है, खाने वाले बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और जहां तक ये सवाल ये प्रश्न है कि केवल स्वाद के लिए स्वीकार करना, इसके बारे में मुझे एक घटना याद आती है कि एक मंदिर में विदेश में है ऐसे हुआ। और ये समस्या काफी कई मंदिरों में पाई जाती है कि महाप्रसाद की चोरी हो जाती है मंदिर से। भगवान को भोग चढ़ता है, भोग चले आता है बाहर, कई लोगों की दृष्टि रहती है महाप्रसाद के ऊपर, तो महाप्रसाद गायब हो जाता है। और विशेष करके जो मिठाई होते हैं, मीठे मीठे वस्तु होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो एक मंदिर में हुआ ये कि उन्होंने देखा कि हर बार जो खीर है वो ही चोरी हो रहा है, मतलब खीर नहीं रहता, बाकी सब है, दाल है, चावल है, सब्जी है, सब है, लेकिन खीर गायब हो रहा है। तो वहां पुजारी ने बहुत कोशिश की क्या ढूंढने के लिए, लेकिन कोई मिला नहीं। फिर मंदिर के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कुछ नियम बनाए, कुछ कुछ क्या नहीं किया, ताला लगाया, उसको ये वो किया, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। अंततः वो भक्त पकड़ा गया, तो उसको पूछा गया कि भाई तुमने चोरी क्यों की? बोले ये तो प्रसाद है ना प्रभु, प्रसाद है, प्रसाद लेने में क्या समस्या है, ये तो महाप्रसाद है, मैंने महाप्रसाद की दृष्टि से इसे लिया है। तो फिर अध्यक्ष ने उसे पूछा, बहुत अच्छा, तुम्हारी भावना देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम महाप्रसाद के इतने प्रेमी हो, लेकिन चावल महाप्रसाद क्यों कभी नहीं लिया, करेला महाप्रसाद कभी क्यों नहीं लिया, सब्जी महाप्रसाद क्यों नहीं लिया, केवल खीर ही क्यों लिया हर बार? इतने दिन जप लिया, इसका मतलब है कि वो प्रसाद का प्रेमी नहीं था, वो खीर का प्रेमी था। मतलब जो खीर का स्वाद है वो उसने स्वाद के लिए चोरी किया, इसलिए नहीं कि ये प्रसाद है कृष्ण का। इसलिए यहां पर उपाय जी कहते हैं केवल स्वाद के लिए स्वीकार करना, इससे भी जीव नियंत्रण में नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से ये प्रसाद है, चलो खाओ, हम तो खिलाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे महाप्रभु भी कैसे उत्सव के समय कभी कभी इतना खिलाते थे, ऐसे कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जबरदस्ती करके लोगों को खिला देते थे, लेकिन रोज की बात ऐसी नहीं थी। रोज की बातों में तो बहुत नियंत्रित थे, बिल्कुल सीमा में उनका प्रसाद सेवन होता था। वैसे एक बार हम राजस्थान में गए थे तो एक राजपूत थे, भक्त थे, तो उनके घर में, कई साल पहले की बात है, उनके घर में गए और दो चार भक्त हम लोग बैठे थे, प्रसाद ले रहे थे, और वो आके बस डाले जा रहे हैं, प्रसाद डाले जा रहे हैं थैली में। उस दिन से हम समझे कि जहां प्रसाद लेते हैं तो बहुत सतर्क रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि कौन कब आएगा, क्या थाली में क्या डालेगा, हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो वो डाले जा रहे थे, बहुत ज्यादा डाल रहे थे, तो फिर सभी ने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आखिर सबने हाथ यूं यूं कर लिया थाली के ऊपर कि अब नहीं होगा। तो कहने लगे कि हमारे यहां ऐसी प्रथा है कि जब तक अतिथि रोएगा नहीं और हमारे पैर नहीं पड़ेगा तब तक हम प्रसाद डालते जाएंगे। अरे ये बड़ी विचित्र प्रथा है कि भाई रुलाओगे क्या अतिथि को, अतिथि को रोकर भेजोगे। तो कई समाजों में ऐसे प्रथा है कि अगर हम अपने आप से नहीं दें तो इसका मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि वो नहीं खाएं, हम कंजूसी कर रहे हैं। तो और साथ साथ में ये एक गृहस्थ की संस्कृति होती है कि चलो खिलाएं, पेट भरकर सबको खिलाएं। तो ये इच्छा है, ये एक अच्छी संस्कृति है वास्तव में, परंतु ज्यादा भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। यहां चौबे ब्राह्मण होते हैं ना मथुरा के, उनके यहां प्रथा होती थी कि कोई असली ब्राह्मण है, किसी यजमान के घर जाता है प्रसाद के लिए, तो चलते हुए उस यजमान के घर से बाहर नहीं आना चाहिए, खटिया पे लेट कर उसे लिए जाना चाहिए, इतना खाना चाहिए उसे कि वो चल भी नहीं पाए, उसे उठाकर ले जाया जाए। और विशेष करके चौबे ब्राह्मण है नहीं ना, कोई चौबे ब्राह्मण यहां, चौबे ब्राह्मण वो होते हैं सबसे पहले दो तीन ग्लास घी पी लेते हैं, सादा घी, ये है असली ब्राह्मण, ब्राह्मण भोजन प्रिय। भगवान कृष्ण जो है, भगवान विष्णु के दो जीव होते हैं, एक है ब्राह्मण और दूसरा है अग्नि, यज्ञ की अग्नि। तो इन दो जीवों से भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो खैर, हमें उन ब्राह्मणों की नकल नहीं करना है, हमें बहुत ही नियंत्रण में अपने आहार को भी रखना चाहिए, और भले वो कृष्ण प्रसाद भी क्यों न हो, शाकाहारी भोजन की बात तो दूर है, वो कृष्ण प्रसाद भी क्यों न हो, वो भी हमें नियंत्रण में ही लेना चाहिए। एक आध बार कभी उत्सव के समय हमने ले लिया वो अलग बात है, लेकिन नियमित रूप से हमारा आहार नियंत्रित रहना चाहिए। हाँ, और एक दृष्टिकोण से इसी परिच्छेद का विश्लेषण हम करें तो यह हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं माया देवी के छह प्रकार के प्रलोभन जिनसे वे हमारी जीव को वश में कर लेती हैं। तामसिक आहार, राजसिक आहार, सात्विक आहार, मादक द्रव्य, धनी व्यक्ति के घर में स्वादिष्ट भोजन केवल स्वाद के लिए स्वीकार करना, केवल स्वाद के लिए प्रसाद ग्रहण करना। तो इसी परिच्छेद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, तो इसी चीज को एक चार्ट के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। ये कोई नई बात नहीं है, केवल जो यहां लिखा हुआ है इसी को बस इस रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। अच्छा, अभी इस परिच्छेद को पढ़ के, जिस परिच्छेद को हम पढ़ चुके हैं अभी, अभी बताइए कि तामसिक आहार यहां पे क्या है। पढ़िए वहां क्या क्या बताया वहां पर, वो वाक्य पढ़िए। तामसिक आहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ तामसिक आहार। अब राजसिक आहार का उदाहरण कहाँ है?
जैसे मसाले अधिक मात्रा
नहीं, हाँ
अन्य लोग इंद्रिय तृप्ति के जैसे।
हाँ पढ़िए, आप सही पढ़ रहे थे, पढ़ो।
इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले अत्यधिक मात्रा मिली है।
हाँ, तो ये राजसिक आहार हो गया। अब सात्विक आहार का वर्णन यहाँ कहाँ पर है, इस तात्पर्य में, इस परिच्छेद में?
सरकारी सब्जी पालक से पहले या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट हो।
तो सात्विक आहार भी अगर हम लें, हम शुद्ध शाकाहारी भी हों, फिर भी ये जरूरी नहीं है कि हम जीभ को नियंत्रण कर पाएंगे। अच्छा, फिर मादक द्रव्य, कौन से मादक द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर है?
पान, हरी पत्ती, सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग।
तो ये सब हुए मादक द्रव्य। तो इतनी सख्ती से हम देखते हैं कि केवल हमारी संस्था में गौड़ीय वैष्णवों में ही ऐसे पाया जाता है। हमने एक जगह देखा था कि कोई वैष्णव सन्यासी, उनके यहाँ वो चाय पीते हैं, तो कभी कभी अलग अलग इतनी सख्ती से वो पालन नहीं करते हैं वो, लेकिन यहाँ हमारे गोस्वामियों ने, हमारे आचार्यों ने इतनी सख्ती से स्पष्टीकरण किया है कि क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं ले सकते, क्या वर्जित है और क्या हम ले सकते हैं। तो ऐसे जितने भी तरह तरह के मादक द्रव्य हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और साथ साथ, हाँ, इसके बाद में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी?
यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण कभी प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वो भी जीव के देह को तुष्ट करने के शिकार बनता है।
तो ये अंतिम हुआ?
नहीं नहीं, बीच में पांचवा हुआ।
अंतिम
केवल स्वाद के लिए,
केवल स्वाद के लिए प्रसाद के रंग, और फिर अंत में
यदि कि हम किसी धनी व्यक्ति को आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहाँ स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
हाँ, और माया की बात कहाँ की गई है इस तात्पर्य में, इस परिच्छेद में? हाँ, तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तो अगर हम छह चीजों का पालन करेंगे या इन छह चीजों से हम सावधान रहेंगे तो फिर माया के चंगुल में हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे पढ़िए।
जो 27 पर कहा गया है, जीवन लालसे यही
आसक्त रहता है वह कृष्ण को पाने में अक्षम है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जीव उदय तथा जननेन्द्रियां एक ही सूची रेखा में स्थित है और वे एक ही कोटि में आती है। भगवान चैतन्य ने कहा है भालना खाइबे और भालना पाइबे, न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करे न ही स्वादिष्ट भोजन करे। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 6 अध्याय 236 पैरा।
ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, जिह्वार लालसे जय इति उतिधाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जो व्यक्ति अपने जिह्वा के लालसा के लिए केवल स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ता है, वो कभी भी अपने उदर जननेन्द्रियों को भी वश में नहीं कर पाएगा और इस प्रकार से वो कृष्ण को भी नहीं पाएगा। तो अगर हमें कृष्ण को पाना है तो इन इंद्रियों को वश में करना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से जिह्वा की बात करने के बाद अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुवृत्त टीका में उदर की बात आती है। अच्छा, और घुमाएंगे इसको। हाँ जी, पढ़िए उदर की बात। उदर, हाँ आगे।
जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के देहों को अस्त लाने में अक्षम रहते हैं। कम से कम इस विश्लेषण से ही यही लगता है जब हम आवश्यकता से अधिक खाना खाते हैं तो हम स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं, किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखते हैं तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं।
ठीक है, तो यही बात यहाँ चार्ट पे लिखी हुई है। उदर का वेग, आवश्यकता से अधिक खाना, यहाँ वर्जित लिख लीजिए, ये वर्जित है। और विशेष दिनों में उपवास रखना, विशेष दिनों में उपवास रखना, इससे उदर वेग को वश में किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने एक बार लिखा है कहीं एक जगह, और आयुर्वेद की दृष्टि से भी ऐसे कहा जाता है कि पेट को या उदर को 50% भोजन से भरना चाहिए, 25% जल और 25% वायु या हवा होनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक है और इंद्रियों को वश में करने के लिए भी ये अच्छा है। ठीक है, अब आई बात जननेन्द्रियों की। ठीक है, तो यहाँ जो भी बतलाया गया है इससे भी हमने एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। ये रही बात जननेन्द्रियों की, अवैध समागम जो अनुचित है, जननेन्द्रिय का प्रयोग इस प्रकार से भी हो सकता है, और दूसरा है वैध समागम जो कि उचित है। तो अवैध समागम क्या है? जो कि केवल काम वासना की तृप्ति के लिए किया जाता है। और वैध समागम या उचित समागम क्या है? जो विवाह के भीतर उत्तम संतान उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। तो ऐसे वैध समागम से जननेन्द्रियां वश में की जा सकती हैं, परंतु अगर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए तो जननेन्द्रियां वश में नहीं आ सकती हैं। तो ऐसे अवैध समागम के अनेक प्रकार हैं, जैसे यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अवैध समागम के बारे में चिंतन करना, इसके लिए योजना बनाना, इसकी चर्चा करना, वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, तो ये सारी चीजें वर्जित हैं। तो यहां नीचे वर्जित लिखिए, नीचे एरो लगा के नीचे, सबसे नीचे वर्जित। ठीक है, आप सबने लिख लिया। ठीक है, आगे पढ़िएगा।
श्री चतुरानंद पंडित ने अपना पुस्तक प्रेम विवर्त के साथ में अध्याय में लिखा है, बैरागी भाई ग्राम कथा ना सुने में काने, ग्राम्य वार्ता न कही भी जमीन सपने सपने वो नातर भाई स्त्री संभाषण गृह स्त्री छड़िया भाई आसिया छवन यदि चाह प्रणय राखी गोलाम गिरे शनि छुट हई दासर कथा ठाकुर ये मने भालना खाई की आर भालना परिवे हृदय ते राधा कृष्ण शब्दा शिविरे।
वैरागी भाई
तुम सन्यासी हो।
एक मिनट, हाँ। तो यहाँ जगदानंद पंडित कह रहे हैं, वो वैरागियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देखो वैरागी भाई, तुमने सब कुछ त्याग दिया है। ग्राम्य कथा ना सुनी बे काने, ग्राम्य कथा मतलब जो साधारण गांव में बातचीत चलती है ना, प्रजल्प होता है, लोग बातें करते रहते हैं, संसार की बातें, यहां ऐसे हुआ वहां ऐसे हुआ, ये सब बातें अपने कानों से सुनना नहीं। ग्राम में वार्ता न कही बे जोबे मिले बे आने, किसी दूसरे से मिलोगे तब ग्राम वार्ता करना नहीं, सुनना भी नहीं और बोलना भी नहीं। स्वप्ने ओ न करो भाई स्त्री संभाषण, तो सपने में भी स्त्री के साथ संभाषण नहीं करना। गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया च वन, घर को छोड़ छाड़कर आए हो वन में और फिर से वही करोगे तो क्या लाभ। यदि चाहो प्रणय राखीते गौरांग रसने, अगर तुम वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के संग में रहना चाहते हो और वही प्रेम का अनुशीलन करना चाहते हो, छोटा हरिदास कथा थाके जनमोने, तो छोटा हरिदास की बात भले याद में रहे, वो कथा आपको मालूम है ना, छोटा हरिदास की कथा। छोटा हरिदास किसी एकांत स्थान में एक माताजी से, एक महिला से बात कर रहे थे महाप्रभु की सेवा के लिए ही। इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी वैसे देखा जाए तो, लेकिन महाप्रभु सिखलाना चाहते थे एक संदेश, एक उपदेश देना चाहते थे सभी को, इसलिए उन्होंने छोटा हरिदास को अपने संग से दूर कर दिया। तो इस बात की यहां, इस बात का उल्लेख यहां पर हो रहा है। भाल न खाइबे, अच्छे पदार्थ स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाना, और भाल न पोड़ीबे, अच्छे अच्छे पोशाक नहीं पहनना। हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे, हमेशा राधा कृष्ण की सेवा हृदय में करते रहना। हाँ जी पढ़िए।
प्रिय भाव, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं करनी चाहिए, और न ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करो। स्वप्न में भी स्त्रियों का चिंता ना करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उनका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो।
नहीं तो ठीक है, तो यहाँ पे इस पहले श्लोक के तात्पर्य का तीसरा भाग समाप्त हो गया। तीसरा भाग कौन सा था? षड वेगों का वर्णन, क्षमा चाहता हूं, इधर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुवृत्ति टीका का वर्णन जो प्रभुपाद जी ने किया है अपने तात्पर्य में, इसकी समाप्ति होती है। और अब आने वाले अंतिम परिच्छेद में प्रभुपाद जी इस सारे तात्पर्य का निष्कर्ष देने वाले हैं। हाँ जी पढ़िए।
निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी मन क्रोध जीव उदर तथा जन्मेंद्रियां इन छहों को वश में कर सकता है वह स्वामी या गोस्वामी कहलाता है। स्वामी का अर्थ मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ को अर्थात इंद्रियों का स्वामी है। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपने इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपने इंद्रियों का स्वामी न हो तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के सर्वगोस्वामियों के पदचिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास हैं वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं, उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अदांत गो के रूप में किया है जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अदांत गो कृष्ण का दास नहीं बन सकता।
ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं गोस्वामी और गोदास का अंतर। गोदास कौन होता है? जो इंद्रियों का दास होता है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती हैं वो गोदास होता है। या दूसरा शब्द क्या है? अदांत गो। गो मतलब इंद्रियां, अदांत मतलब जो नियंत्रित नहीं है, संयमित नहीं है, अदांत गो। तो हमें चाहिए कि षड गोस्वामियों के पदचिन्हों में चल के हमारी इंद्रियों को पूरी तरह से हम श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण के सेवा में हम लगाएं। तो आगे श्रीमद् भागवत का एक प्रसिद्ध श्लोक का उल्लेख प्रभुपाद जी यहां करते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी से कहा था, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि तुम क्या सीखे हो अपने गुरुकुल में, तो प्रहलाद महाराज ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई थीं उनमें से एक बात ये है, ये भी श्लोक बहुत सुंदर है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम् अदांत गोभिर्विशतांत मिश्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमारी जो मति है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो झुकाव है वो कृष्ण में होना चाहिए, हमारी कृष्ण मति होनी चाहिए। परंतु ऐसे कई लोग हैं जिनकी मति कृष्ण में लगती ही नहीं है, मति न कृष्ण। और जब वो लोग दूसरे लोग प्रयास करते हैं, परतः स्वतः वा मतलब अपने आप भी वो प्रयास करते हैं, या मिथः दूसरों के प्रयास से और अपने प्रयास से भी उनकी मति कृष्ण मति नहीं होती है। क्यों? क्यों गृह व्रतानाम, उन्होंने गृह का व्रत धारण किया हुआ है कि मैं गृह में ही रहूंगा, गृह में ही मेरा चिंतन मनन रहेगा, मेरी सारी दुनिया केवल गृह से संबंधित होगी, संसारी विचार संसारी विषयों में ही मैं रमण करूंगा। ऐसे व्रत धारण किया हुआ है इस आदमी ने, गृह व्रतानाम। और अदांत गोभीर, अभी अभी हम सुन चुके हैं कि अदांत गो क्या है। अदांत गो क्या है? जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, विषताम तमिश्रम, वो नारकीय अवस्था में प्रवेश करता है। और क्या करता है? पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, इंद्र तृप्ति करता है, बारंबार उसी स्वाद को चखने का प्रयास करता है जो कि वो अनादिकाल से इस भौतिक जगत में चखते आया है। अनेक योनियों में, अनेक जन्मों में उसने ये स्वाद लिया हुआ है, परंतु फिर भी इसी स्वाद को लेने में वो बहुत आतुर रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भले कृष्ण में कैसे अपने मन को केंद्रित कर सकता है, उसकी कृष्णमति कैसे हो सकती है? महाप्रभु आशीर्वाद देते थे, कृष्णे मति रस्तु, कि तुम्हारी मति कृष्ण में हो। वो कभी ये नहीं कहते थे चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, नहीं, वो कृष्णे मति रस्तु, कि तुम्हारी मति कृष्ण में हो। तो हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या अनुवाद देते हैं श्लोक का, पढ़िएगा। श्री प्रहलाद महाराज की जय। तो इसके साथ अब प्रथम श्लोक की चर्चा समाप्त हुई। वैसे जितना हमने सोचा था उससे काफी ज्यादा समय लग गया इसमें, लेकिन खैर यहां कोई हम रेस नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह से चर्चा करते जाएं, भले आगे चल के एक दो क्लास और बढ़े, वो चलेगा ना आपको? चलेगा, एक दो क्लास बढ़ भी जाएं, लेकिन अच्छी तरह से चर्चा करके हम समाप्त करें। प्रश्न ये है कि यहाँ बताया गया है कि भक्तों के संग से, किसी दूसरे के संग से भी या वाणी से उसका मन परिवर्तित नहीं होता है, तो क्या फिर भक्तों के संग का कोई लाभ नहीं है? अवश्य है, परंतु बहुत समय लगेगा ऐसे व्यक्ति के लिए। जैसे अगर ये खिड़की बंद है ना, तो बाहर की रोशनी, बाहर की हवा नहीं आ सकती। बाहर तो हवा है सबके लिए, पड़ोस में किसी व्यक्ति ने खिड़की खोल के रखी है तो उसके अंदर, घर के अंदर हवा आती है, रोशनी है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। उसी प्रकार से हमने अगर हृदय का दरवाजा बंद कर लिया है तो साधु संघ में रहेंगे फिर भी उस साधु संघ का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। यदि हम वैष्णवों की निंदा नहीं करें, भले हम ऐसे अदांत गो हों, साधु संघ का प्रभाव पड़ेगा, भले वो धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन अवश्य पड़ेगा। लेकिन अगर हम ईर्ष्यालु हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं, तो फिर साधु संघ में आना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, प्रगति अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। हाँ जी, हाँ प्रश्न ये है कि ये कहा जाए, ये बताया गया था कि नरक लोक से बचने के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए, और ये भी बताया गया है कि पाप काम को पुण्य करने से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं महाराज नृग का। महाराज नृग ने एक छोटी सी गलती की थी, ये कथा आप सबको मालूम है ना। उन्होंने गाय दान दी थी एक ब्राह्मण को, वो गाय अपने आप फिर से चली आई महाराज नृग के गौशाला में, और न जानते हुए महाराज नृग ने उसी गाय को एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। तो पहले ब्राह्मण को पता चला कि मुझे दी गई गाय को अब दूसरे ब्राह्मण को दान में दी गई है, तो उनको गुस्सा आया, वो आए राजा के पास, कहा कि मुझे वही गाय चाहिए। तो दोनों ब्राह्मण अपने बात में अटल रहे, तो फिर राजा इस वाद को ठीक ठाक सेटल नहीं कर पाए। तो फिर ये ब्राह्मण, जब हम किसी व्यक्ति को दान देते हैं तो वो वस्तु उसका हो जाता है, फिर हमारा अधिकार नहीं होता है उस वस्तु के ऊपर, और उसी वस्तु को हम अगर फिर से ले लेते हैं तो वो चोरी के बराबर हो जाता है। तो जब राजा ने एक ब्राह्मण को गाय दान दी थी तो उसको गाय को वापस ले ली, तो फिर वो चोरी के समान हो गया। ब्राह्मण से चोरी करना एक पाप होता है, जिसकी वजह से उनको एक चिपकली बनना, चिपकली कहते हैं ना, चिपकली बनना था, ठीक है, जो बन गए, लेकिन बहुत ही सुंदर चिपकली बन गए। भगवान श्री कृष्ण के समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्पर्श किया। महाराज नृग की मृत्यु जब हुई, यमराज ने खाता देख लिया पाप और पुण्य का, और देखा कि चलो इतने पाप किए हैं, ये एक ही पाप है बस, वो भी अनायास हो गया, पुण्य तो बहुत है, और पुण्य के बल पर इस राजा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होनी है, परंतु ये एक पाप है, तो इस पाप की वजह से इसे छिपकली के शरीर ग्रहण करना होगा। तो राजा से पूछा गया कि आपको कौन सा पहले लेना चाहिए, दोनों लेने पड़ेंगे आपको, आपने पाप भी किए हैं, आपने पुण्य भी किए हैं, दोनों को अलग अलग से भोगना होगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने ढेर सारे पुण्य किए हैं इसलिए ये पाप क्षमा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर महाराज नृग ने कहा कि मैं पहले पाप को भुगत लेता हूं। फिर वो छिपकली बन गए, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने करकमलों से स्पर्श किया तो फिर वो स्वर्ग लोक में चले गए। तो ये उदाहरण है इस बात का कि पाप कर्म, पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं हो जाते, दोनों को अलग से भोगना पड़ता है। लेकिन प्रायश्चित क्या है, ये भी एक प्रकार का पुण्य कार्य है, परंतु वो एक अमुक, एक विशेष पाप के निवारण के लिए किया जाता है। महाराज नृग ने ऐसे नहीं किया था, महाराज नृग ने उस पाप के प्रायश्चित के लिए कोई कार्य नहीं किया था, उन्होंने ढेर सारे अन्य पुण्य किए थे, लेकिन उस विशेष पाप के लिए प्रायश्चित का कार्य नहीं किया था उन्होंने। तो प्रायश्चित है वो विशेष कार्य होता है, वो विशेष पुण्य कार्य होता है जो एक अमुक पाप के निवारण के लिए किया जाता है, ताकि उस पाप का फल उतनी मात्रा में हमें नहीं मिले। ठीक है, तो ये है प्रायश्चित की विधि। लेकिन फिर भी जैसे परीक्षित महाराज ने तुरंत इसको नकार दिया कि ये कोई काम का नहीं है, प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम, ये बिल्कुल व्यर्थ है। तो और कोई प्रश्न है? हाँ, क्या करने जाते हैं? हाँ हाँ, अपने सेवा के समय जैसे प्रचार करते हैं या पुस्तक वितरण करते हैं। हाँ, प्रश्न ये है कि जब हम प्रचार करने जाते हैं पुस्तक वितरण आदि, तो किसी संसारी व्यक्ति से मिलते हैं और वो हमारी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन पहले अपनी बात बताना चाहते हैं, अपने जीवन की व्यथा या उनकी समस्याएं क्या हैं वो बताना चाहते हैं। तो यदि ऐसी बातें सुनने से अंत में वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार होंगे तो ठीक है, थोड़ा सहन कर लें। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि ये आदमी केवल बोलना ही चाहता है और हमारी बात सुनेगा नहीं, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय व्यर्थ गंवाने के लिए हमारे पास नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रचार करना है, ऐसे कई लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, तो क्यों ना हम उनके पास जाएं। स्वाभाविक है कि हर एक व्यक्ति यहां दुखी है दुनिया में, तो जिसके पास जाएं तो वो अपने दुख को सुनाना चाहता है, ये स्वाभाविक है। परंतु अगर ऐसी अवस्था में वो सुनने के लिए तैयार है तो बस फिर उसके साथ थोड़ा समय हम बिताने में ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा कहीं न हो कि उसकी बातें सुनते सुनते हम कहीं उनके इसमें बह जाएं। तो ऐसे भी बातें करते करते भी सीमा के भीतर हमें रखना चाहिए, नहीं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। लोग अपने दुख सुनाते जाएंगे तो कौन है जिसकी दुखों की गणना जो सीमित है। सबकी दुख जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं दुनिया में, सीमित ढंग से हमें सुन लेना चाहिए और सही पॉइंट पे आना चाहिए कि ठीक है आपकी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन ये उपाय है, रामबाण उपाय आपको बता रहे हैं, समस्या अनेक उपाय एक। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, भरपेट मतलब भरपेट मतलब कि जितना आवश्यक है उतना पेट के लिए उतना, जितनी पचन शक्ति है उससे ज्यादा आप लेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। पेट भर के लेना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं, सही मात्रा। वास्तव में ये प्रश्न ये है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं और हमें दंड नहीं मिलता है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन से श्रेणी में हम हैं, प्रथम श्रेणी, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? वास्तव में दंड आवश्यक होता है, ये कृपा होती है। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि अगर कोई खून करता है तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये धर्मशास्त्रों के अनुसार, मनु संहिता के अनुसार एक नियम है, और ये राजा की कृपा है उस खूनी के ऊपर, क्योंकि जब उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसे आगे नरक लोक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उस पाप का फल उसे मिल गया है, नरक से बच जाएगा वो। परंतु झूठे कृपा के विचार करके अगर हम उसे फांसी की सजा नहीं देंगे, जैसे कि आधुनिक विचारधारा ऐसी है कि करुणा की भावना रख के कि हम दंड नहीं देंगे उसे, तो उसे नुकसान होगा। जीते जी भी वो जेल में बेचारा रहेगा, भले खून उसको फांसी न दी जाए लेकिन जेल में रहेगा, दुखी रहेगा, और मृत्यु के बाद भी उसे नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों के लिए मृत्यु दंड आवश्यक है। तो उसी प्रकार से दंड मिलने से वो पाप या अपराध का जो फल है वो नष्ट हो जाता है, और यदि वो व्यक्ति पुनः उस कार्य को नहीं करता है तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में यह प्रायश्चित जो है वो ठीक ठाक हो गया है। लेकिन अंततः सच्चा प्रायश्चित, जैसे हम सुन चुके हैं, वही है कि हम भगवान की भक्ति करें। अगर भक्त कोई गलती कर लेता है तो बस उसे भक्ति में लगे रहना चाहिए, अपने नियमों का पालन कठोरता से करना चाहिए, फिर वो उसका प्रायश्चित है। जो भी दंड है उसके साथ साथ अपनी भक्ति भी बड़ी तीव्रता से करनी चाहिए। हाँ जी, और किसी ने हाथ उठाया था? किस तत्व का? वस्तु। हाँ, महाप्रसाद का सेवन करने से अवश्य प्रभाव तो हृदय पर पड़ता ही है, चाहे व्यक्ति श्रद्धालु हो या न हो। फिर भी जब वही चीज श्रद्धापूर्वक ग्रहण की जाती है तो उस वस्तु की शक्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल, महाप्रसाद की शक्ति अवश्य होगी, धीरे धीरे से होगी, लेकिन उस शक्ति का प्रभाव कितने समय में आएगा वो हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि केवल महाप्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनना चाहिए, महाप्रसाद की शक्ति तो है, बना सकता है, लेकिन जब हमारी श्रद्धा या हमारी पात्रता उतनी नहीं होती तो शुद्ध भक्त बनने के लिए समय लगेगा। लेकिन श्रद्धा पूर्वक अगर हम ग्रहण करते हैं, इसका मतलब है कि महाप्रसाद के सेवन के साथ साथ हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवत कथा सुन रहे हैं, तो फिर इन सब का प्रभाव मिलजुल कर आएगा, तब हम भक्ति में बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि साथ साथ में शुद्धिकरण तो हो रहा है, परंतु इंद्रियों को वश में करने के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना आवश्यक है। हम उस दृष्टि से नहीं ले रहे हैं कि ये कृष्ण प्रसाद है, इसलिए हमारी भावना का अंतर पड़ता है। ये कृष्ण कथा, ये कृष्ण भावनामृति बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे हम कृष्ण नाम लेते हैं तो व्यक्ति के चेतना पर भी निर्भर पड़ता है, करता है कि कृष्ण नाम कितना असर करेगा उसके हृदय के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति अपराध युक्त नाम लेता है और कोई व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है, नाम तो वही है परंतु लेने वाले की भावना अलग है, लेने वालों की श्रद्धा अलग है, इसलिए असर अलग पड़ता है। भाव, उसका प्रभाव जो है वो अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण प्रसाद भी, हालांकि अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, उसका असर होगा, अवश्य होगा, परंतु क्योंकि उस व्यक्ति की श्रद्धा कम है इसलिए उसे ज्यादा समय लगेगा। महाप्रसाद गोविंद प्रार्थना क्या है, केवल वो एक श्लोक बताइए, क्या उसका अर्थ है, कौन बताएंगे? महाप्रसाद गोविंदे, हाँ उसका बताइए, गोविंदे, हाँ ठीक है, अर्थात जब हम महाप्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए कि ये भगवान से अभिन्न है ना, इसको श्रद्धा कहते हैं। तो क्योंकि ये महाप्रसाद महाप्रसाद है, भगवान की मूर्ति भी भगवान की मूर्ति है, लेकिन देखने वालों में फर्क पड़ेगा। जो आदमी आके भगवान की मूर्ति का दर्शन करता है लेकिन भक्ति नहीं है, और जो आदमी भक्ति भाव से दर्शन करता है, तो दोनों का फर्क पड़ता है। भगवान का नाम एक श्रद्धालु व्यक्ति लेता है और एक नास्तिक व्यक्ति लेता है, फर्क पड़ता है। तो महाप्रसाद में भगवान की मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, ना भगवान के नाम में अंतर है। तो जब श्रद्धा का विचार हरि नाम में हो सकता है तो प्रसाद में क्यों नहीं हो सकता, वो नहीं चाहिए। तो इसलिए श्रद्धा ये बहुत महत्वपूर्ण है। असर इन चीजों का अवश्य पड़ेगा परंतु समय पर। ठीक है, और कोई प्रश्न? अंतिम प्रश्न, वैसे भी बारिश हो रही है तो आप जा नहीं पाएंगे। हाँ अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है और वो जप करने का इच्छुक है तो उसे क्या कहना चाहिए, पहले वो जप करे या पहले वो मांस खाना छोड़ दे? ये प्रश्न है ना आपका, तो आप सबका मत क्या है?
जप करे।
बस सबसे पहले जप, फिर बाद में ये सब चीजें छूट जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार से दूसरे श्लोक, कल शाम 4:30 बजे दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे, अत्याहार प्रयासश्च, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, गौर प्रेमानंदे।